ध्रुव महाराज का भगवान के यहाँ पत्र रचना पत्र तस्य तस्यां विशुद्ध करणः शिव पादिकाय
तस्यां विशुद्ध करणः शिव पादिकाय
भद्वासनं जितमरुं मनसः हृताक्षः
भद्वासनं जितमरुं मनसः हृताक्षः
स्थूले तथार भगवत् प्रतिरूप एतत्
स्थूले तथार भगवत् प्रतिरूप एतत्
ध्यायं स्तव्यवहितो व्यसृजत् समाधौ
ध्यायं स्तव्यवहितो
बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया के श्वास तथा प्राण वायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने इंद्रियों को पूर्णतया समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अज्ञान विग्रह रूप में केंद्रित किया जो भगवान का असली प्रतिरूप है और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रवेश हो गए। तात्पर्य यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है जिसके ध्रुव महाराज पहले से अभ्यस्त थे। अष्टांग योग किसी फैशनेबल शहर में अभ्यास करने के लिए नहीं बनाया ना था, अतः ध्रुव महाराज बद्रिक आश्रम गए और एकांत स्थान में योग अभ्यास करने लगे। उन्होंने अपना मन अच्छा उपग्रह पर केंद्रित किया जो परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार इस उपग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए। अर्चा विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह तो भक्तों को ग्राह्य भगवान का अवतार है, अतः भक्तगण मंदिर में भगवान की सेवा अर्चा विग्रह रूप में करते हैं। जो स्थूल पदार्थ तथा यथा पत्थर धातु काष्ठ रत्न या रंग का बना स्वरूप है, ये सभी पदार्थ स्थूल अथवा भौतिक प्रतीक हैं। क्योंकि भक्तगण पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं, अतः वहां पर भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान अपने आदि आत्म रूप से अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात यह भगवान के विचार में डूबा रहता है। यह भगवान का निरंतर विचार जिसकी संस्कृति गीता में है मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देती है। कि ध्रुव महाराज ने अपने राज्य को त्याग दिया और बद्रिक आश्रम चले गए और अष्टांग योग का अभ्यास करने लगे। कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। ध्रुव महाराज की बात कृतयुग या सत्य युग की है जिसमें युग धर्म ध्यान मार्ग का था अष्टांग योग और त्रेता युग में यज्ञ प्रमाण द्वापर में अर्चा विग्रह की ऐश्वर्यशाली आराधना का मार्ग और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का मार्ग। तो ध्रुव महाराज सत्य युग में विद्यमान थे, इसलिए उस काल की जो युग धर्म उस काल के युग धर्म को अपनाया उन्होंने और इस हेतु बद्रिक आश्रम में चले गए। लेकिन आजकल ये हमारे लिए साध्य नहीं है, इसलिए हमारे लिए हरिनाम संकीर्तन और भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन यही एकमात्र उपाय है। साथ साथ में हम अर्चा विग्रह की आराधना भी करते हैं।
लेकिन उसके बारे में थोड़ी चर्चा न करेंगे। लेकिन उसका विशेष महत्व भी होता है कि वो हमें श्रवण कीर्तन में आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन करे, हृदय का शुद्धिकरण करे। अच्छा विग्रह की आराधना अपने आप में कलयुग में हमें संस्कृति तक पहुंचा नहीं सकती है, क्योंकि कलयुग का धर्म हरिनाम का संकीर्तन है। वैसे प्रहलाद महाराज तो बताते ही हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्था विष्णु भक्तिश्च नव लक्षणम। प्रहलाद बताते हैं कि ये नौ लक्षण जो है भक्ति के, ये नौ अलग अलग मार्ग हैं, और किसी भी एक मार्ग को अपनाकर व्यक्ति समसिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। जैसे कि श्रवण का मार्ग, भगवान के गुणों का श्रवण करने मात्र से ही कोई व्यक्ति जीवन को सफल बना सकता है। इसके लिए कोई उदाहरण, परीक्षित महाराज कीर्तन अर्थात भगवान के गुणगान करने मात्र से ही कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। उदाहरण सुखदेव गोस्वामी, स्मरण भगवान के गुणों का स्मरण करने मात्र से ही कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। उदाहरण प्रहलाद महाराज, आगे चल के श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन भगवान के चरणों की सेवा करने से, भगवान के धाम में रहकर भगवान के धाम की परिक्रमा करने से, इस तरह से कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। उदाहरण लक्ष्मी देवी, पाद सेवनम अर्चनम, अर्चनम मतलब भगवान के श्री विग्रह या अर्चा विग्रह की आराधना पूजा, इनसे भी कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। उदाहरण पृथु महाराज, वंदनम केवल भगवान के प्रति वंदना सुनकर प्रार्थना स्तुति अर्पण करने मात्र से भी व्यक्ति सफल बना सकता है अपने जीवन को। उदाहरण अक्रूर जी, दास्यम केवल भगवान के दासत्व को स्वीकार करते हुए भगवान की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। उदाहरण हनुमान जी, और कोई अर्जुन तो अलग है, द्वारका में कितने सारे थे, पात्री दारुका भगवान के रथ को चलाने वाले वगैरह बहुत सारे, इनका वर्णन पढ़ने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, बहुत सुंदर रूप से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और फिर सक्षम भगवान का मित्र बन के हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उदाहरण अर्जुन, और अंततः आत्मनिवेदन भगवान की पूरी शरणागत लेने से, भगवान की शरण में पूरी तरह से जाने से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उदाहरण बलि महाराज, तो वास्तव में इन नौ पद्धति, इनको आपस में संबंध है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग स्वतंत्र मार्ग है, लेकिन फिर भी कलयुग के लिए विशेष महत्व श्रवण कीर्तन और स्मरण का रखता है। लेकिन हम स्मरण तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम श्रवण और कीर्तन ठीक से नहीं करते। और जो भी हम सारे पद्धतियां अपनाते हैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, वो केवल हमारे श्रवण कीर्तन को और भी आगे बढ़ाने के लिए, बस अन्य सारे जो मार्ग हैं, अन्य सारे पद्धतियां हैं, क्रियाएं हैं, वो केवल हमारे श्रवण कीर्तन में सहायता करने के लिए हैं। और श्रवण कीर्तन केवल इसलिए है कि अंततः हम भगवान का स्मरण कर सके। जैसे कि हम कल हम चर्चा कर रहे थे कि एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अति नारायण स्मृति, कि हमारे जीवन की परिपूर्णता ऐसी में है कि अंततः हम नारायण या श्री हरि का स्मरण करें। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं, अंत काले च नामेव स्मरण भूत्वा कलेवरम् ये प्रयाति समर्थाः व्याति नास्त्यत्र संशयः, कि जो व्यक्ति अंत काल में मृत्यु के समय जब वो प्राण त्याग रहा है, जब वो मेरा स्मरण करेगा, तो निस्संदेह निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होगा। ये बच्चे तो भगवान क्या बता रहे हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, श्रवण मुक्त्वा कलेवरम नहीं बोलते, कीर्तन मुक्त्वा कलेवरम नहीं बोलते, क्या बोल रहे हैं? स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात अंत काल में भगवान का स्मरण करना, केवल भगवान का नाम का श्रवण करना काफी नहीं है, उससे अवश्य लाभ होगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर कोई भगवान का नाम श्रवण करते हुए प्राण त्याग करे, या तो फिर हे राम बोलते हुए त्याग करे, तो क्या जीवन की सफलता को प्राप्त करेगा कि नहीं, हम कह नहीं सकते, भगवान जानते हैं। अगर उस व्यक्ति ने स्मरण किया होगा भगवान का अच्छे ढंग से, तो फिर वो भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन भगवान का स्मरण अंतकाल में करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जब तक आदमी ने अभ्यास नहीं किया होगा भगवान का स्मरण करना अपने जीवन भर में, अंतकाल में कैसे वो भगवान का स्मरण कर पाए? भले को उसके कान में भगवान का नाम चीख चीख कर पुकार भी क्यों रहा हो, और अगर वो भी भगवान का नाम ले रहा हो, लेकिन अंतकाल में माया उसको धोखा देगी और किसी को पुकारेगा, भगवान को नहीं पुकारेगा। इसलिए राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरातम अद्वैव विशुद्ध वेमानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कटवात वित्तलि कंठावलोकन मिलो स्मरणं कुतस्ते। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, बहुत जोर से चलाते हैं, तो प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए इसी वक्त मेरे प्राण को आप वापस खींच लीजिए। मेरा मन जो है मानस राजहंस एक हंस की तरह है, और आपके चरण कमल जो है वो कमल के डंडे की तरह है, तो मेरे हंस रूपी मन को आपके कमल डंडे रूपी चरण कमलों में प्रवेश करने दीजिए इसी वक्त। अर्थात मेरा मन आपके स्मरण में हमेशा डूबा रहे, और ऐसे अवस्था में ही मेरे प्राण को भी त्याग दीजिए, क्योंकि जब मेरा अंत काल अगर वैसे बुढ़ापे में आ जाएगा वृद्ध अवस्था में, तो क्या होगा? कंठ अवरोधन हो, कंठ में क्या होगा? पित्त बात, ये तीन चीजों का मिलन होगा, यहाँ चुप हो जाएगा सब, और मैं आपके नाम का उच्चारण नहीं कर पाऊंगा, और अंत काल की वेदना इतनी तीव्र होगी कि मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब मेरा स्वास्थ्य ठीक है उसी समय मुझे प्राण त्याग दीजिए। तो इस तरह से अंत काल में भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन होता है, इसलिए जीवन भर हमें अभ्यास करना चाहिए कैसे भगवान का स्मरण करें। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी यही बताया गया है, कौन सा श्लोक है, भगवान हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च भगवान ईश्वरो हरि तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्ताम पति श्रोतव्य कीर्तव्यश्च भगवान कीर्तिदा पूज्यस् ध्येयं पूज्यस् कीर्तिदा। श्रीमद् भागवत का वर्णन आता है कि वास्तव में जो व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तस्मात् एकेन मनसा अपने मन को एकाग्र चित्त से भगवान सात्वताम पतिः, सात्वत मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं, पतिः मतलब उनके स्वामी होते हैं, तो क्या करता है? जो भक्तों के पति भक्तों के स्वामी श्री हरि के बारे में क्या करते हैं? श्रोतव्य कीर्तव्यश्च धैर्य पूज्यश्च नित्यदा, हमेशा उनके बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, धैर्य उनको अंतिम जीवन का ध्येय बनाकर उनका स्मरण करते हैं, उनका पूजा आराधना करते हैं। जो अपने जीवन को वास्तव में सफल बनाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये श्लोक वास्तव में विद्या का सार बतलाता है, संस्कृति का सार बतलाता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। इसी धन का श्लोक बस दो तीन शब्द अलग करके यही श्लोक कई बार भागवत में आता है, इस तरह से यही बात को बार बार सुखदेव महाराज दोहराते जाते हैं कि किसी न किसी तरह से एकाग्र चित्त से भगवान के ऊपर मन को केंद्रित करना चाहिए। ये न तेन प्रकार मन कृष्ण द्वेष, किसी न किसी तरह से हमें भगवान के ऊपर मन केंद्रित करना चाहिए। अष्टांग योग का भी उद्देश्य यही होता है, कि ध्यान स्थित होकर हृदय में विराजमान परमात्मा रूपी भगवान के ऊपर मन को लंबे समय तक केंद्रित करना। अष्टांग योग का मतलब है अष्ट अंग, जो आठ अंगों वाला योग पद्धति है उसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग की आठ पद्धतियां शुरू होता है आसन से, आसन फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, समाधि। इस तरह से ये पद्धतियां होती हैं और जब व्यक्ति ये ध्यान धारणा ध्यान समाधि इत्यादि जो होता है इसकी परिभाषा क्या है कि जितना लंबे समय तक हम भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं उसको समाधि कहते हैं। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कीजिए उसको समाधि कहते हैं, लेकिन कम समय तक तो उसको केवल ध्यान कहते हैं या धारणा कहते हैं। तो समाधि में स्थित होना अर्थात भगवान का निरंतर स्मरण करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो सत्ययुग में इस समाधि की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग की पद्धति अपनाया जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे क्रमशः भगवान का स्मरण करते करने का अभ्यास जो है उसका अनुशीलन करते करते वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। समाधि मतलब क्या है? हमेशा भगवान के स्मरण की अवस्था में रहना, यह समाधि। लेकिन जो व्यक्ति भोग में रहता है वो कभी समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अहित चेतसा व्यवसायत्मक समाधि न उदीयते। तो जो व्यक्ति भोग जीवन में रहा है उसके लिए भगवान का स्मरण थोड़े समय के लिए करना बहुत कठिन हो जाता है, तो समाधि की प्राप्ति कैसे हो सकती है उसके लिए? समाधि न विधीयते। इसलिए हमें शुद्ध जीवन बिताना चाहिए, इंद्र तृप्ति से ज्यादा दूर रहना चाहिए और इस तरह से हमारी साधना फिर साधना का फल मिल सकता है। अगर साधना भक्ति करते करते इंद्र तृप्ति ज्यादा कर रहे हैं तो फिर हमारी साधना निष्फल हो जाएगी। जैसे कि आग लगा करके पानी डालते हैं, आग लगा कर फिर से पानी डालते हैं, तो साधना का कोई फल ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमें जीवन भर यही एक अनुशीलन करनी चाहिए, क्या कि भगवान का स्मरण कैसे करें, यही हमारा उद्देश्य होता है। आजकल में केवल श्रवण कीर्तन से हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज बुद्धिमान थे तो उस समय अष्टांग योग की पद्धति लोग अपनाया करते थे क्योंकि वही युग धर्म हुआ करता है। और यहाँ वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज भगवान के रूप का स्मरण कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वो केवल किसी निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है स्थूले धार भगवत प्रतिरूपे एतत्, कि स्थूल रूप में भगवत प्रतिरूप भगवान के रूप का स्मरण कर रहे थे। इसका मतलब है कि भगवान का रूप है, भगवान को व्यक्ति है और ध्रुव महाराज अष्टांग योगी होने के बाद भी इस रूप का स्मरण करते थे क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। वास्तव में तीन प्रकार के साधक होते हैं आध्यात्मिक जीवन में। आप बता सकते हैं कौन से तीन प्रकार के साधक हो सकते हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र में तीन प्रकार के लोग हो सकते हैं? नहीं, अलग अलग विभाजन, योगी, तीन प्रकार के योगी हो सकते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र। एक बात, जो ज्ञानी होते हैं, दूसरे जो योगी होते हैं और तीसरे कौन? भक्त, भगवान की भक्त। तो ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो केवल श्रवण कीर्तन आराधना भक्ति प्रेम भाव से भगवान की सेवा करते हैं और इस तरह से अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जो अष्टांग योगी होते हैं वो अष्टांग योग पद्धति अपनाते हैं और जो ज्ञान योगी होते हैं वो ज्ञान योग का पथ अपनाते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानद्वयं तन्मेति परमात्मेति भगवान् इति शक्यते। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में कि ये जो तीन प्रकार के साधक हैं वो उसी परम सत्य की आराधना करते हैं, लेकिन परम सत्य क्या है उनकी अलग अलग जानकारी होती है। ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शक्यते। तो जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं, ब्रह्म इति निराकार ब्रह्म मानते हैं, और जो अष्टांग योगी होते हैं परमात्मा इति भगवान को हृदय में स्थित परमात्मा मानते हैं, और जो भक्त होते हैं वो क्या जानते हैं भगवान इति शक्यते, वो जानते हैं कि परम सत्य भगवान श्री हरि है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के साधक जो होते हैं ज्ञान तो उसी परम सत्य को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग जानते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं भगवान को निराकार समझते हैं, केवल भगवान के निराकार स्वरूप के सीमा तक उनका ज्ञान है, आगे उनको ज्ञान नहीं है। परमात्मा रूप और भगवान का साकार रूप उसके बारे में ज्ञान नहीं है। जो भक्ति योगी होते हैं वो जानते हैं कि परम सत्य साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वो व्यक्ति है, उनका दिव्य सच्चिदानंद रूप होता है, और उनके दिव्य रूप से ही परमात्मा और निराकार ब्रह्म उत्पन्न होते हैं। गीता के 14वें अध्याय में भी भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं ब्रह्मण भी प्रतिष्ठान, कि निराकार ब्रह्म के आधार भी श्री कृष्ण के दिव्य शरीर ही है, और बीच में होते हैं अष्टांग योगी, ज्ञानी और भक्त के बीच में। अभी भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं, भगवान के लोक में जाकर वैकुंठ लोकों में जाकर भगवान का निजी संग करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त होते हैं। जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं ज्ञानी, वो निराकार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं और वहां पर रहते हैं, लेकिन अंततः उनका भी पतन हो जाता है, ज्यादा समय निराकार ब्रह्म रह नहीं पाते। अरविंद अक्षर हे कमल नयन वाले श्री कृष्ण, ये अन्य अन्य जो भक्तों के अलावा जो लोग हैं जो ज्ञानी हैं अपने आप को मुक्त मानते हैं, विमुक्त माने लेकिन वास्तव में मुक्त नहीं है, अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। हालांकि अपने आप को मुक्त मान रहे हैं लेकिन वास्तव में मुक्त नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है अभी तक। ज्ञान मार्ग में आकर वो क्या करते हैं, आरोही कृच्छ्रेण बड़ी तपस्या करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, क्योंकि ज्ञानी की तपस्या बड़े कठिन होती है, वन में जाकर उनको जीवन भर तपस्या करना है, बहुत कम लोग कर सकते हैं, और ऐसी तपस्या के बल से क्या सोचते हैं, परम परम तथा सोचते हैं कि मैंने परम पद की प्राप्ति कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, पतन के अधः उनका पतन होता है, क्यों पतन होता है, अनादृत युष्म अंधयः, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को नहीं स्वीकार करते हैं, आप तो भक्ति भक्ति मार्ग को टुकरा देते हैं, केवल आपको निराकार समझते हैं, आपको व्यक्ति भी नहीं समझते हैं, इसलिए क्योंकि आपके चरण कमलों के प्रति वो अनादर करते हैं इसलिए उनका पतन हो जाता है। तो देखिए जो ज्ञानी होते हैं वो अंततः निराकार भ्रम में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर से वहां से उनका पतन होता है। जो भक्त होते हैं वो भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं, भगवान के निजी संग को प्राप्त करते हैं, शाश्वत भगवत लीला में शामिल होते हैं, और पुनः कभी यहां लौट कर नहीं आते हैं। तत्धाम परम मम यद कत्वा निवर्तन्ते तत्धाम परम मम, तो जो मेरे धाम की प्राप्ति कर लेता है वो पुनः इस भौतिक संसार में नहीं लौट कर आता। तो एक ओर है ज्ञानी, दूसरी ओर है भक्त, और बीच में रहकर अष्टांग योगी। तो अष्टांग योगी की गति क्या होगी, हमने ज्ञान योगी की गति देखी है क्या, और भक्त की गति क्या होगी वो भी देख लिया, अब अष्टांग योगी की गति क्या होगी बताइए, आप किसे कौन बता सकते हैं तो बताएंगे।
परमात्मा रूप में अपने हृदय के अंदर ही वो उसका जान लेते हैं कि मैं ही भगवान हूँ।
हाँ, लेकिन गति क्या होती है? मृत्यु के बाद गति कहाँ जाएगा? मृत्यु के बाद जो ज्ञान योगी है, जिसने सफलता प्राप्त की है, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है। जो भक्त है, जो भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त कर चुका है, वो भगवान के धाम में जाकर भगवान के निजी संग करता है, फिर से लौट कर संसार नहीं आता। और जो बीच में है अष्टांग योगी, उसकी गति कहाँ है? बीच में रह जाता है। ऐसे कैसे कहाँ बीच में? हो सकता है, लेकिन सही स्पष्ट जवाब चाहिए। नहीं, जा सकते हैं, लेकिन अष्टांग योग के लिए दो मार्ग खुले हैं। अगर उसके अष्टांग योग से अगर उसके भक्त का संग हो और उसे अच्छा मार्गदर्शन मिले, तो वो धीरे धीरे से अष्टांग योग के मार्ग को आगे बढ़ाते, उसमें बढ़ते बढ़ते वो भक्ति तक पहुंच सकता है, फिर वो भक्ति योगी बन जाएगा। और भक्ति करते करते वो भक्त बन जाएगा, फिर भक्त की गति उसको प्राप्त हो जाएगी, भगवान के धाम में चले जाएगा। योगी नाम भी सर्वेशां मत गति अंतरात्मा श्रद्धावान भजते योगां सनयुक्त तमो मदा। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में सारे योग पद्धति का सार दिया हुआ है, चाहे वो अष्टांग योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो। सबसे ऊंचा योगी कौन है? योगी नाम अभी सर्वेशा कौन है? वो मत गति अंतर आत्मनः, जो अंतर ही अंदर क्या करता है? श्रद्धावान भजते योगां, जो मेरा भजन करता है, जो नित्य मेरा स्मरण करता है। श्रद्धावान भजते योगां संयुक्त तमो मतः, ये सबसे ऊंचा योगी है, ये मेरा मत है। कृष्ण भगवान घोषणा करते हैं, कौन वो व्यक्ति है जो हमेशा भगवान का स्मरण कर सकता है, श्रद्धा भाव से उनका भजन कर सकता है? कौन है वो व्यक्ति? भक्ति हो सकता है, और कौन करेगा? जब हम श्रद्धा भाव से एकाग्र चित्त से भगवान का भजन करने की बात करते हैं, तो भक्त के अलावा कौन कर सकता है? मन मना भगवान भक्त मध्याजिमा नमस्कुरु मां एक सत्यों से हमेशा मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मेरी उपासना करो, मेरा नमस्कार करो। तो हर समय भगवान यही बता रहे हैं कि मेरा भक्त बनो। तो भक्त ही है जो सबसे ऊंचा योगी है। इसलिए भगवत गीता का सार कर्मयोग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, अष्टांग योग नहीं है, लेकिन भक्ति योग है। जन साधारण का मत क्या है कि भगवत गीता कर्मयोग का ग्रंथ है। महाराष्ट्र में लोग ज्यादा बोलते हैं कि जो गीता का सार है वो ज्ञानेश्वर के अनुसार अष्टांग योग है, और कोई और कुछ कहेगा, लेकिन वास्तव में गीता का सार क्या है? भक्ति है। यही वास्तव में गीता का निचोड़ है। तो इस तरह से अष्टांग योगी अगर धीरे धीरे से सौभाग्य से भक्तों का संग करके भक्ति मार्ग में आगे भक्त बने, तो आगे चल के भक्ति की गति प्राप्त हो सकती है। और अगर भक्त का संग प्राप्त नहीं हो, तो हो सकता है कि बीच में अटक जाए वो, और सिद्धि जब प्राप्त हो जाए, सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात संसार को भोग करने की इच्छा रखे, क्योंकि सिद्धि से बहुत शक्ति मिलती है। कोई आदमी दूसरों के मन पर वश कर सकता है, कोई विभूति निकाल सकता है, कोई क्या कर सकता है, बहुत यश को संसार में बहुत लोग उसको बाबा कह सकते हैं। तो ऐसे सिद्धियों में अगर योगी अटक जाता है, तो लोगों को चमत्कार दिखाने में रह जाता है, तो उस योग पद्धति के मार्ग में आगे प्रगति नहीं करेगा, वो सिद्धियों में और संसार में अटका रहेगा, इसलिए फिर से उसका पतन हो जाएगा संसार। लेकिन अगर सिद्धियों से आकर्षित न होकर, सिद्धियों की शक्ति से प्रभावित न होकर, इस प्रलोभन में न फंसकर अगर वो आगे बढ़ता रहेगा उसी मार्ग में भक्तों का संग न करते हुए, तो ज्ञान बन जाएगा और निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। तो देखिए, तीन पथ हैं, तो तीनों भगवान की ओर जा रहे हैं। लेकिन अच्छा कार्य दिखाइए, आपको दिखाएंगे कैसे तीन पथ आगे चलते हैं। कोई बड़ा चार्ट दिखाएंगे, बड़ा सा चार्ट, कोई कैलेंडर का कोई और फिर बोर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं, इसको मिटाइए। हम देखते हैं कि जो ज्ञान मार्ग होते हैं, निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, अगर अपनी साधना करते रहे तो निराकार ब्रह्म भी हो जाते हैं, अगर उनको भक्तों का संग मिले तो भक्त बन जाते हैं, और फिर भक्ति मार्ग में प्रगति करते करते भगवान के धाम तक पहुंच जाते हैं। उधर अष्टांग योगी होते हैं, अगर अपने सिद्धियों से प्रभावित होकर भोग करने का प्रयास करते हैं तो उनका अंततः पतन हो जाता है। अगर उनको भक्तों का संग मिल जाता है या भक्ति के संस्कार उनके अंदर हैं या तो कोई सुकृति है तो फिर अष्टांग योग के मार्ग से वो भक्ति में लगेंगे और भक्ति करते करते अंततः भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। अगर ऐसे भक्ति उनको सुकृति उनके अंदर नहीं है या भक्तों का संग नहीं है और अपनी सिद्धियों से प्रभावित नहीं होते हैं तो धीरे से वो ज्ञान मार्ग में फिर वो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे आगे चल के। और भक्त जो होता है भक्ति योग का जो पालन करता है वो तो सीधा भगवान के धाम में चला जाए। कभी कभी पीछे जाता है छोटा छोटा, खास करके भक्ति योग में छोटे छोटे पतन होते रहते हैं भक्तों के, लेकिन फिर भी अगर आदमी इसमें दृढ़ता से रहे तो अच्छी तरह से भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो ध्रुव महाराज कहाँ करते इस चित्र में अष्टांग योग में थे, लेकिन वास्तव में वो भक्त बन गए थे क्योंकि उस समान में वही मार्ग था, अष्टांग योग का ही मार्ग था और उनको भक्तों का संग हुआ। पहले आपको याद होगा नारद मुनि का संग हुआ, पहले तो वो भक्त, वो तो योगी भी नहीं थे, ज्ञानी भी नहीं थे, भक्त भी नहीं थे, वो तो केवल एक साधारण बालक थे, लेकिन नारद मुनि की कृपा हुई इसीलिए वो फिर सीधे अष्टांग योग के माध्यम से ही शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर गए। और क्योंकि उन्होंने बचपन में ऐसे अभ्यास किया हुआ था इसलिए यहाँ पर भी जब उनको राज्य त्यागने का समय आया तो आसानी से योगाभ्यास कर सके। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि उन्होंने भगवान का प्रेम पूर्वक स्मरण किया, हमेशा स्मरण करते रहे, भगवान के रूप का स्मरण करते रहे। तो स्पष्ट प्रतीत होता है यहाँ पर कि वो ज्ञानी नहीं थे, जो निराकार ब्रह्म की गति तो उनको प्राप्त नहीं हुई। जो व्यक्ति सतत भगवान के दिव्य रूप का स्मरण करता है वो तो भगवान के धाम को ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ध्रुव महाराज को हम समझना चाहे कि वो एक महाभागवत हो गए, शुद्ध भक्त बने और इस तरह से भगवान के सुंदर दिव्य रूप का स्मरण करते करते वो अपना अपनी तरह से भद्रिकाश्रम में कर रहे थे। उसी तरह से हमें भी हमारी साधना करते समय या सारे दिन पर हमारे कार्य करते समय भगवान का स्मरण करने का भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी प्रमुख साधना श्रवण की तरह है तो वही करना चाहिए, लेकिन स्मरण के साथ साथ जब हम श्रवण हम जाप करते हैं तो हमें जाप को ध्यान से सुनना चाहिए तो ये स्मरण हो जाता है। श्रवण कीर्तन अपने आप में अधूरा है जब तक स्मरण साथ में ना हो। जैसे हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं लेकिन उसको सुन नहीं रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वैसे श्रवण कीर्तन का ज्यादा लाभ नहीं होगा। इसलिए बताया जाता है कि जब हम हरिनाम को उच्चारण करते हैं तो जिह्वा और कान के बीच में उसको पकड़ लेना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए, मतलब मन में उसको ट्रैक कर लेना चाहिए। तो जो हम श्रवण कीर्तन करते हैं, जो बोलते हैं, उसका ध्यान से श्रवण करना चाहिए। जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ध्यान से या ध्यान पूर्वक, इसका मतलब स्मरण, मन आते मन बीच में आ जाता है। वास्तव में श्रवण शरीर के किस अंग से करते हैं? मन से। कान क्या है? एक सिर में छेद है बस, है ना, थोड़ा इसमें दूर पड़ता है, ये टिम्पैनम वगैरह क्या है ना, तो मन है ना, बस टिम्पैनम वगैरह है ना, कुछ पड़ता है कुछ है, लेकिन अंततः स्मरण कहाँ होता है? मन में होता है। जैसे अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं लेकिन बीच 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 में कितने बार आपका मन घूम गया है निर्दय, तो श्रवण करते हुए भी आप श्रवण नहीं कर रहे, कानों के अंदर ध्वनि जा रही थी लेकिन मन केंद्रित नहीं था ध्वनि के ऊपर, इसलिए वो श्रवण नहीं कह पाता है। इसलिए श्रवण वास्तव में मन से किया जाता है, श्रवण के बिना कीर्तन का ज्यादा लाभ नहीं और स्मरण के बिना श्रवण का ज्यादा लाभ नहीं। इसलिए अगर श्रवण और कीर्तन को का फल हमें वास्तव में चाहिए तो स्मरण चाहिए, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि श्रवण के बिना क्या निष्फल है, कीर्तन निष्फल है, और स्मरण के बिना क्या निष्फल है, श्रवण निष्फल है। इस तरह से तीनों का मिलन अगर हो, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, तब जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं हम अच्छी तरह से सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसे गुरु महाराज हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, हम भी हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम भगवान का नित्य स्मरण करते हुए अंत काल के भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम लौट कर जा सकते हैं और भगवान के निजी संग में रहकर उनकी निरंतर शाश्वत सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कितने हुए, छह और दो कौन से हैं, कोई बता सकते हैं किसको याद है, सात हुए, तो एक बीच में है प्रत्याहार हुआ, प्रत्याहार धारणा हुआ, यम आया है। तो बताते हैं कि ये दोनों मार्ग का पहले अभ्यास हो चुका है, तो क्या इन दोनों मार्गों का फिर चिंतन करना उचित है?
नहीं, आवश्यक नहीं है। भक्ति मार्ग में आने के बाद में इन दोनों मार्गों के ऊपर यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने जानकारी के लिए हम जाने कि मार्ग कहाँ कहाँ जाते हैं, ताकि कहीं हम गलती से उनमें जाए नहीं। जानकारी होनी चाहिए लेकिन उन पर जाना नहीं चाहिए, ताकि हम तेजी से भक्ति मार्ग में ही उसी मार्ग में बने रहें और सीधा सीधा चलते रहें। क्योंकि जब तक नक्शा नहीं होगा, मैप ठीक से नहीं होगा, आपको अगर क्लियर नहीं है कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, हो सकता है कि हम भटक जाएं, इस रास्ते में चले जाएं, उस गली में चले जाएं। तो हमें नक्शा ठीक करने के लिए भागवत में गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कौन सा मार्ग
और अलग से प्रवचन करना होगा। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी है कौन और फिर ये कैसे आए, कैसे एक और दिन पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन बाहरी रूप से भी वो ब्रह्मवादी थे, मायावादी थे, ब्रह्मवादी मतलब कि वो जो आकर्षित थे निराकार से। ब्रह्मवादी में मायावादी में अंतर ये होता है कि मायावादी भगवान से ईर्ष्या करता है और भगवान के व्यक्तिगत अस्तित्व को नकारता है, लेकिन ब्रह्मवादी केवल निराकार ज्योति से आकर्षित होता है, भले वो भगवान के स्वरूप को तिरस्कार की निंदा न करे, चाहे उसे जानकारी हो ना हो, वो भी सकता है उसकी जानकारी है, लेकिन आकर्षित होता है निराकार। तो सुखदेव गोस्वामी चांदमान ऐसे ब्रह्मवादी थे, तो मायावादी नहीं थे। तो जब भक्तों का संग हुआ, जब चार चतुष कुमारों को ने सुगंध लिया भगवान के चरण कमलों पे तुलसी अर्पण किए हुए थे, तुलसी के मंजरी उनका सुगंध लिया, भक्त माने किसी भी एक इंद्रिय से संग कर ले भगवान के भक्तों का भक्ति का भक्त बन जाए। सुखदेव गोस्वामी ने भगवान का वर्णन सुना, कभी आपको सुनाएंगे कैसे वर्णन सुना, क्या वर्णन सुना, कैसे भक्त बना, तो उन्होंने एक बार वर्णन सुना, भक्त बन गया। हम तो कितनी बार रोज सुनते हैं, हम तो कर्मवादी नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हमें भक्ति में प्रगति करने के इतना थकन होता है। वास्तव में भगवान आए थे, उनको प्रार्थना किए थे, भाई चले आओ अभी अंदर मत रहो। सुखदेव गोस्वामी घबरा रहे थे कि दोबारा अगर माया में पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं माँ के घर के अंदर ही रहूंगा। 16 साल में और अभी चर्चा कि ज्ञान योग अष्टांग योग जो है वो भी विद्यमान है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में आए हैं, केवल भोग के जीवन में नहीं रहे हैं, तो क्यों वो सीधे से भक्ति मार्ग में नहीं आते? इसके पीछे मूल कारण को बता सकता है क्या है? मूल कारण क्या है? अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लोगों की अलग अलग मनोवृत्ति प्रवृत्ति होती है। कोई लोगों की इच्छा है कि इस तरह से तपस्या करें, कोई इस भगवान के निराकार रूप में लीन हो जाए, और भगवान ने ऐसे अलग अलग मार्ग क्यों बनाए हैं? अलग अलग मनोवृत्तियों को अकोमोडेट करने के लिए, अपने अपने जगह में। जैसे सरकार ने अलग अलग जगह बनाए हैं, यहाँ शहर में एक अच्छा उद्यान बनाया है, एक प्रकार के लोग उद्यान में जा सकते हैं, दूसरी ओर जेल बनाया है, जो लोग यहाँ पर वो जेल में प्रवेश कर सकते हैं, तीसरी ओर मंदिर बनाया है तो मंदिर में भी आ सकते हैं, और शराब काटा बनाया है, अलग अलग जगह बनाए हैं, जैसे जिसकी इच्छा हो वैसे उस जगह में जा सकता है। तो इस तरह से जैसे जैसे इच्छा लोगों की है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यहाँ भी विविधता होती है, वेराइटी। आध्यात्मिक जीवन में भी अलग अलग प्रकार की वेराइटी होती है। तो इस तरह से जैसे लोगों की इच्छा आध्यात्मिक जीवन में होती है वैसे वैसे कर सकते हैं। और भक्ति मार्ग के अंदर भी विविधता होती है, 9 प्रकार के नव भक्ति से नव लक्षण, नव नवला भक्ति प्रहलाद महाराज की जो बात है। भक्ति मार्ग भी कोई व्यक्ति पढ़ने को ज्यादा पसंद करता है, भक्तों का भगवान के ग्रंथ पढ़ने पसंद करता है, कोई भगवान के रचे वगैरह की सेवा करना पसंद करता है, कोई व्यक्ति कीर्तन करना पसंद करता है, कोई प्रसाद खाना पसंद करता है, कोई प्रचार करना पसंद करता है। तो भगवान की सेवा भी अलग अलग तरह से हो सकती है, भक्ति मार्ग में भी विविधता है, वैरायटी। रूपा जी समझाते हैं वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, विविधता से ही जीवन में मसाला आता है, थोड़ा बहुत है ना स्वाद आता है जीवन में। तो इसलिए विविधता ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में भगवान के नाम है। रस अलग अलग प्रकार के होते हैं, भावनाएं भक्ति की अलग अलग होती है। तो उसी तरह से भक्ति मार्ग के बाहर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे अलग अलग इच्छा के अनुसार अलग अलग पथ भगवान ने दिए हो। ये यथा मां प्रपद्यते तां स्थितेव भजामि मम वर्तमान वर्तते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। कि जैसे आदमी भगवान की ओर देखना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, वैसे ही भगवान उसके सामने पथ देते हैं। लेकिन सब भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, मनुष्य मां सर्वशः, कि सभी मनुष्य जो है मम वर्तमान वर्तते मेरे पथ पे चल रहे हैं, चाहे वो भोगी हो, रोगी हो, योगी हो, भोगी हो, भक्ति हो, भक्त हो, कोई भी हो, भगवान के कानून को कोई तोड़ नहीं सकता। सभी भगवान के पथ में चल रहे हैं, लेकिन सारे लोगों के बीच में से बुद्धिमान वो हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सबसे बुद्धिमान वो है जो भक्ति में आता है। अरे और कोई प्रश्न माइक में दे दी, स्वतंत्र है। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग भक्ति मार्ग के ऊपर निर्भर है। भक्ति माता के बराबर है और ज्ञान वैराग्य ये दो पुत्री हैं। जहां माता जाती हैं, दो छोटे बच्चे भाग भाग के पीछे जाते हैं। तो जहां भक्ति है वहां ज्ञान वैराग्य सब कुछ आ जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता है, जनन्य आशु वैराग्यं ज्ञानं च पालितुकम्। भक्ति में वर्णन है जहां भक्ति है वहां सब कुछ, ज्ञान वैराग्य सब। तो जिस भक्ति योगी है उसने ज्ञान का भी पथ अपना लिया है, अष्टांग योग का भी अपना लिया है, क्यों सब मार्गों का फल उसके पास है। लेकिन जो ज्ञान योगी है वो अपने मार्ग में भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक कि थोड़ी बहुत भक्ति उसके मार्ग में आए। उसी तरह से अष्टांग योग भी है, इस तरह से ज्ञान योग और अष्टांग योग या अन्य कोई भी योग पद्धति भक्ति के ऊपर निर्भर है सफलता की प्राप्ति के लिए, लेकिन भक्ति मार्ग किसी अन्य मार्ग के ऊपर